ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की शक्ति का दोहन करें। श्री मोदी कल ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दोहराया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला आज किया जाएगा। पुलिस ने कल आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पेदाबयालू मंडल में पर्णी जंक्शन के पास 275 किलोग्राम गांजा जब्त किया। उप पुलिस निरीक्षक के रमना ने बताया कि प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे 2 ऑटो को रोका गया और गांजा बरामद होने पर 3 व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनाने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित वैश्विक सम्मेलन रविवार को बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। सहमति के लिए इस पर 2 वर्षों से वार्ता चल रही है। वार्ता के अंतिम दौर में 200 से अधिक देश दक्षिण कोरिया में मिले, लेकिन लगभग 100 उच्च महत्वाकांक्षी देशों के समूह के बीच गहरे मतभेद बने रहे, जो प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की मांग कर रहे थे। कुवैती वार्ताकारों ने कहा कि प्लास्टिक से दुनिया भर में लोग लाभान्वित हुए हैं। अंतिम दिन वार्ता के अध्यक्ष लुइस वायस वाल्डिविसो ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की वजह से इस पर व्यापक समझौता नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत्य संघ इस्कॉन की कोलकाता शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठनों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के प्रति उदासीन रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मुद्दे पर कड़ा बयान जारी करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सहायक एजेंसी ने कहा है कि सुरक्षा वजहों से वह इजराइल और गाजा के बीच वाले मुख्य क्रॉसिंग से फिलिस्तीनियों को सहायता आपूर्ति फिलहाल रोक रही है। फिलिस्तीन शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने कहा कि केरेम शालोम क्रॉसिंग के पास सशस्त्र गिरोहों ने हाल ही में राहत सामग्रियों के 2 काफिले लूट लिए थे। उन्होंने इसराइल से कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। सीरिया में एलेप्पो पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों पर रूस ने कई हवाई हमले किए। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार एलेप्पो के एक अस्पताल पर हमले में 12 लोग मारे गए। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। तूफान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले कुछ घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में दबाव के क्षेत्र में बदल जाने के आसार हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।